जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेगाचार्य अश्वत्तर श्री श्रीमद श्री एक श्री भक्ति वेदान स्वामी शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेगाचार्य अश्वत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताई गौर प्रेम नंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद यदि कोई दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है इसको जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वित चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आप सभी का स्वागत है इस सुबह के चैतन्य चरितामृत सत्र में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय दो आदिलीला श्लोक क्रमांक है 25। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्यन सेन सब विग्रह देखे देवगण। भक्त पाए आहार दर्शन सूर्यन सर देव भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्यन सब विग्रह देखे देवगण। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देवगण। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देवगण। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देवगण। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देव। माता जी भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देव गाना। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देवगण। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन सूर्य न सविग्रह देखे देवगण। शब्दार्थ भक्ति योगे भक्ति योग से भक्त भक्त पाए पाता है याहार जिनका दर्शन दर्शन सूर्य सूर्यदेव येना जैसा विग्रह विग्रह सहित रूप सहित देखें देखते हैं देवगण स्वर्ग के निवासी। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्यदेव को देखते हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक शाश्वत रूप है जिसे भौतिक आंखों से या मानसिक कल्पना से नहीं देखा जा सकता। केवल दिव्य भक्ति द्वारा भगवान के इस दिव्य रूप को समझा जा सकता है। यहां पर इसकी तुलना सूर्यदेव के व्यक्तित्व के दर्शन करने की योग्यताओं से की गई है। सूर्यदेव एक व्यक्ति हैं जो यद्यपि हमारी आंखों को नहीं दिखते किंतु उन्हें देवतागण उच्चतर लोगों से देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें सूर्यदेव के चारों ओर से घेरने वाले तीव्र प्रकाश के पार को देखने के लिए सक्षम है। प्रत्येक ग्रह का अपना वायुमंडल होता है जो भौतिक प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। अतएव किसी विशेष ग्रह तक पहुंचने के लिए विशेष शारीरिक बनावट होनी आवश्यक है। पृथ्वी के निवासी चंद्रमा तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, किंतु स्वर्ग के निवासी सूर्य जैसे अग्निमय मंडल में भी पहुंच सकते हैं। पृथ्वी के मनुष्य के लिए जो असंभव है वह स्वर्ग के देवताओं के लिए सुगम है, क्योंकि उनके शरीर भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पास भक्ति की आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए, जो परम सत्य के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य ध्वनि की सहायता लिए बिना कल्पना करने के आदि हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। आरोह पद्धति से परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं। ओम अज्ञानान्ति मिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुर्वे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलिंगायते गिरिं यद् कृपातं हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, और आप सब वरिष्ठ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके सामने मैं लगभग अनाड़ी बच्चे के समान ही हूँ। गुड़ाकेश प्रभु भी देखे थे मैंने यहाँ बैठे हुए, तो क्योंकि सेवा दी गई है तो कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तो जब भक्त लोग यहाँ ऑन साइट हैं उनसे अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद दें, और जो ऑनलाइन में हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि चेतन चंद्रदास जैसे महान ग्रंथ पर टूटा फूटा कुछ कह सके। योग्यता तो नहीं है लेकिन सेवा तो करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चेतन चरितामृत जो है वो दो खंडों में लिखा गया है। शुरू के पहले खंड में 1 से लेकर 7 अध्याय हैं, और दूसरे खंड में 8 से लेकर 17 अध्याय। कुल मिला के इसमें जो है 17, इनको परिच्छेद बोलते हैं, 1 से 7 और 8 से 17, तो इनको परिच्छेद बोला जाता है। तो टोटल कुल मिला के चेतन चरितामृत में 17 परिच्छेद है। तो पहले मैं संक्षिप्त में एक एक परिच्छेद में क्या विषय वस्तु है उनका सा हल्का सा वर्णन करेंगे, फिर आज का दूसरा अध्याय इसकी विषय वस्तु क्या है उसका हल्का सा वर्णन करेंगे, फिर आज के श्लोक की विषय वस्तु क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 17 परिच्छेद है कुल इसमें। तो जो पहला परिच्छेद है उसमें गुरुवादी तत्व के विषय में चर्चा की गई, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो गुरु तत्व की बात की गई मुख्य रूप से। और फिर जो दूसरा परिच्छेद है उसमें मंगलाचरण, जैसे मंगलाचरण 3 तरह के होते हैं, तो वस्तु निर्देश मंगलाचरण जो है उसकी चर्चा की गई है। और मंगलाचरण का अर्थ मतलब ऐसे लगा सकते हैं कि मंगल, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं, जैसे बाहर के लोग शादी करते हैं विवाह करते हैं तो वो मंगल कामना करते हैं। जैसे हम लोग आध्यात्मिक यज्ञ कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो मंगल कामना की जाती है आचार्यगणों से कि आप हमें कृपा दीजिए कि हम कुछ कह सकें, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। तो दूसरे परिच्छेद में वस्तु निर्देश मंगलाचरण का वर्णन है, जिसमें कि श्री चैतन्य तत्व का निरूपण किया गया है। मतलब अभी बाहर के लोगों को तो ये सब पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो उनको अगर ये बात समझानी है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं साक्षात षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या करना होगा, पहले भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करना होगा, उनको एस्टेब्लिश करना होगा, फिर चेतन तत्व को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो वैसे ही किया गया है यहाँ पर। तो दूसरा जो परिच्छेद है उसमें चेतन तत्व का जो है निरूपण किया गया है। और तीसरा जो परिच्छेद है वो उसमें आशीर्वाद मंगलाचरण में भगवान चेतन महाप्रभु के अवतरण के बाहरी कारणों का वर्णन है। तीसरे परिच्छेद में बाहरी कारण कहे या विशेष कारण कहे उनका वर्णन है। और फिर जो चौथा परिच्छेद है उसमें भगवान चेतन महाप्रभु का आंतरिक कारण, क्यों चेतन महाप्रभु इस धराधाम पर आए, क्या आवश्यकता पड़ गई उनको आने की, तो आंतरिक कारणों का वर्णन है। तो भगवान की धर्मलीला में आप लोग जानते ही हैं कि सामान्यतः 2 कारण होते हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। तो वहां तक उनका वर्णन है चौथे परिच्छेद तक। और फिर एक्चुअली मूलतः जो शुरू के चार परिच्छेद हैं इनको एक लाइन में यदि कहें तो हम कह सकते हैं कि उनमें चेतन तत्व का वर्णन किया गया। और फिर जो पांचवा परिच्छेद है उसमें नित्यानंद तत्व को स्थापित किया गया है, नित्यानंद तत्व के विषय में बताया गया है, उनकी महिमा का गान किया गया है। जो छठवां परिच्छेद है उसमें श्री अद्वैत तत्व का निरूपण किया गया है। सातवें में परिच्छेद में पंचतत्व की महिमा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो मुझे याद है कि उसकी टीका में, अमृत प्रभा टीका, भक्ति विनोद ठाकुर ये बात लिखते हैं इस परिच्छेद में कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है और वो पंचतत्व को नहीं जानता है, उनकी महिमा का गुणगान नहीं करता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी टीका में बोलते हैं कि वो जो है भगवान कृष्ण की कृपा फिर प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर जो सात हो गया, अच्छा आठवां जो परिच्छेद है उसमें वैष्णव अवज्ञा कथन का वर्णन किया गया, यानी कि जो पंचतत्व हैं उनके प्रति अपराध यदि कर दिया जाए तो कृष्ण की पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। और भक्ति विनोद ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं जरासंघ का, किस प्रकार जरासंघ जो थे उन्होंने जो यज्ञ किए, विष्णु यज्ञ जो किए वेद धर्म के अनुसार किए थे, जो वेद धर्म बताते हैं सिद्धांत बनाते हैं वैसे ही किए थे, किंतु उन्हें कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त हुई थी। तो वैसे यदि पंचतत्व के प्रति अपराध किया गया है तो महामंत्र की कृपा मिलना बहुत कठिन है, इसका डिटेल में वर्णन है, डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर नवा परिच्छेद में जो है इस बात का वर्णन किया गया कि किस प्रकार भक्ति तत्व जो है वो कल्पतरु वृक्ष के समान है, जो भक्ति तत्व है उसको कल्पतरु वृक्ष मानकर वर्णन किया गया। और उसके मूल में कौन है, भक्ति वृक्ष के मूल में भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनका वर्णन है। फिर जो दसवां परिच्छेद है उसमें महाप्रभु की निज शाखा का वर्णन किया गया है। और ग्यारहवें परिच्छेद में नित्यानंद प्रभु की निज शाखा, उनके जो गण है, समूह है, जो भक्त वृंद है, उनका वर्णन है। बारहवें परिच्छेद में अद्वैत प्रभु की निज शाखा का वर्णन किया गया है। और फिर तेरहवें परिच्छेद में महाप्रभु की जन्म की लीलाओं का वर्णन है, आप सब लोग सुन चुके होंगे। और चौदहवें परिच्छेद में महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है। पंद्रहवें परिच्छेद में महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का वर्णन है। और सोलहवें परिच्छेद में भगवान चेतन महाप्रभु की किशोर लीलाओं का वर्णन है। और सातवें और अंतिम परिच्छेद में चेतन महाप्रभु की यौवन लीला, उसका वर्णन है। तो एक तरह से अगर कहें तो परिच्छेद क्रमांक 12 से लेकर परिच्छेद क्रमांक 17 तक महाप्रभु के गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है। तो ये तो होगा पूरे 17 परिच्छेद। अब हम आएंगे अपने आज का जो परिच्छेद है हमारा अध्याय 2। इस परिच्छेद का शीर्षक क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु। रूपा जी ने पुस्तक लिखी कृष्णा, तो उसमें लिखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और यहां पे बोल रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो पूरा अध्याय है ये इसमें इसी बात को जो लेखक हैं इसके कृष्णदास कविराज जी, वो ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने तरह तरह के प्रमाण लेकर, ऑफकोर्स अधिकतर प्रमाण भागवतम से लिए हैं, और इस बात को स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है और सबके मूल उद्गम स्त्रोत हैं। चेतन महाप्रभु हर अवतार के उद्गम स्त्रोत है, वो अवतारी है ना कि अवतार है, इस बात को इस पूरे अध्याय में वर्णित किया जा रहा है। तो बड़े ही क्या बोलेंगे, बड़े रणनीतिक तरीके से वो आए हैं कि किस तरह उन्होंने श्लोक बाय श्लोक करके स्थापित किया कि चेतन महाप्रभु कोई और नहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, इसको उन्होंने बिल्कुल जमा दिया है। और इस अध्याय में जो है इस बात का भी वर्णन है कि परम सत्य के तीन साक्षात्कार होते हैं। स्वाभाविक जब हम परम सत्य की बात करेंगे तो परम सत्य तीनों जो क्या बोलेंगे उसको, परम सत्य के तीन साक्षात्कार जो होते हैं उनको बताना ही पड़ेगा, उनको स्थापित करना ही पड़ेगा। तो तीन साक्षात्कार जो है वो कौन कौन से हैं, आप लोग को पता ही होंगे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। तो इन तीनों को उन्होंने इसी अध्याय में स्थापित किया है। अभी कैसे किया वो भी चर्चा करेंगे अभी हम आगे श्लोक वाइज। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है, वो कुछ और नहीं अभी तू भगवान चेतन महाप्रभु की शारीरिक कांति है, दिव्य कांति है, और जो परमात्मा है, परमात्मा तत्व क्या है, वो कुछ और नहीं चेतन महाप्रभु है जो प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, स्थापित है, बैठे हुए हैं। और भगवान तो कुछ और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, सॉरी साक्षात भगवान चेतन महाप्रभु है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इतना ही नहीं, यह करने के बाद वो आगे और भी विस्तार पूर्वक बताते हैं इस अध्याय में कि किस प्रकार जो दूसरा अवतार है, पुरुष अवतार है, या और भी जो भगवान के अवतार है, वो सब जो है चेतन महाप्रभु से ही निकले हैं, और चेतन महाप्रभु जो है उन सब अवतारों के उद्गम स्त्रोत हैं, यहां तक कि वे नारायण के भी उद्गम स्त्रोत हैं। इसे कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि सब अवतारों के उद्गम स्त्रोत कौन है, तो नारायण है। ऐसा अनेक लोगों का मानना है कि सबके मूल में कौन है, तो भगवान नारायण है। तो आगे के श्लोक में वो चेतन महाप्रभु से खंडन करेंगे, आज के श्लोक में तो नहीं, लेकिन आगे के श्लोक में वो खंडन करेंगे और बताएंगे किस प्रकार जो है भगवान चेतन महाप्रभु सबके मूल में है, और जिस तरह पुरुष अवतार उनसे आए हैं, उस तरह से नारायण भी उन्हीं से ही आए हैं, इसका वो निरूपण करेंगे। तो कुल मिलाकर सारांश में बात ये हो रही है, यदि एक लाइन में कहा जाए, हमसे कोई पूछे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है, तो एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि चेतन महाप्रभु कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण, और वो अवतारी हैं, ना कि अवतार हैं। इस बात को स्थापित किया है इस पूरे अध्याय में। अब हम इस अध्याय का हल्का सा आकलन करेंगे कि जो अध्याय है इसमें कुल 66 श्लोक हैं, यस 66 66 श्लोक हैं इसमें। तो शुरू के एक से लेकर 9 श्लोक तक तो लेखक ने प्रस्तावना का मंडन किया है, परिचय दिया है तत्वों के विषय में, और फिर 10 से लेकर 27वें श्लोक में उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि किस प्रकार परम सत्य जो है या चेतन महाप्रभु हैं, उनके तीन परिपेक्ष हैं, तीन दृष्टिकोण हैं, ब्रह्म ज्योति भी है, भगवान भी है और परमात्मा भी है, और इन तीनों में जो भगवान साक्षात्कार है वो सर्वोच्च है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसकी बात शुरू के 10 से लेकर 27वें श्लोक तक की गई है। अब स्वाभाविक, जब भगवान को अगर हमें परम सत्य के बाद बताने की, वो परम सत्य कोई और नहीं साक्षात भगवान है, वो एक व्यक्ति है, उनका विग्रह है, उनका रूप है, तो स्वाभाविक है कि मैं भक्ति योग की बात करनी ही पड़ेगी। तो इस श्लोक में मेनली जो है भक्ति योग की बात की जा रही है। इसके बाद फिर जो आगे के श्लोक है 28 से लेकर 66 तक, इसमें इस बात को लेखक ने ठोक ठोक के इस बात को स्थापित किया है कि श्री कृष्ण जो है वो नारायण से भी श्रेष्ठ है। और उसमें जो है लेखक ने 10वें स्कंद से रेफरेंस लिया, 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है वो, तो वहां तो हमें जाना नहीं है। तो ये तो का पूरे अध्याय का अवलोकन जिसे कह सकते हैं। शुरू के 1 से लेकर 3 श्लोक तक तो प्रणाम है, प्रार्थनाएं हैं, चेतन महाप्रभु के विषय में प्रार्थना की गई, उन्हें प्रणाम किया गया है। 4 से लेकर 9 श्लोक तक, ये बड़ा अद्भुत है कि जो 4 से लेकर 9 श्लोक हैं उसमें जो अगला अध्याय है उसका सार तत्व प्रस्तुत कर दिया है, ताकि पहले से आदमी प्रिपेयर हो जाए कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं, कितना गंभीर विषय है। और फिर 18 से लेकर 21 तक परमात्मा के विषय में बातचीत दी गई, परम सत्य का जो दूसरा पहलू है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 12 से 17 तक निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बात की गई है, क्योंकि स्वाभाविक है परम सत्य ब्रह्म ज्योति है, तो निर्विशेष की बात तो की ही जाएगी। तो इस बात को बताया गया कि चेतन महाप्रभु ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म कुछ और नहीं, चेतन महाप्रभु की शारीरिक कांति है। फिर 18 से 21 तक परमात्मा साक्षात्कार के विषय में चर्चा की गई कि चेतन महाप्रभु जो है हर जीव में स्थित है, उनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, अष्टांग मार्ग। तो अभी चर्चा करेंगे हम, संक्षिप्त में इतना समय तो रहेगा नहीं, अभी आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार तीन तरह के योगी होते हैं, उनमें क्या अंतर आता है, क्यों उनके गंतव्य अलग अलग हो जाते हैं, अभी चर्चा होगी उसकी। उसमें शिल भक्ति सांसी ठाकुर ने उपासना भेद बताई है, अभी चर्चा करेंगे हम। तो 22 से लेकर 27 तक जो है भगवत साक्षात्कार का वर्णन है कि चेतन महाप्रभु कुछ और नहीं, परम सत्य भगवान है, और वही षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है। षड ऐश्वर्यपूर्ण यानी भगवान, आप जो जानते हैं कि परम सत्य के 6 ऐश्वर्य होते हैं। सबसे पहला क्या है, यशस्व, सबसे यशस्वी है वो, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक वैराग्यवान है, इत्यादि इत्यादि। अभी देखिए, कोई कह सकता है कि ये सब ऐश्वर्य तो किसी और जीव में भी मिलते हैं, मनुष्यों में भी देखने को मिलते हैं, या देवी देवताओं में भी देखने को मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, भक्तों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है, अंतर यह है कि भगवान का जो ऐश्वर्य पहली चीज है वो फुल है, पूर्ण में है एकदम, और जगत के किसी भी चीज में वो ऐश्वर्य पूरी मात्रा में नहीं है, आंशिक रूप से है। और दूसरा और सबसे बड़ा अंतर कि भगवान का जो ऐश्वर्य, जो छह ऐश्वर्य, वो नित्य है, शाश्वत है, वो हमेशा ही रहते हैं, हर काल में रहते हैं, सर्वदेशव्यापी है, वो सर्वकाल व्यापी है, सर्वत्र है वो। लेकिन अन्य जीवों में यह सुविधा नहीं है कि उनका ईश्वर हमेशा ही ऐसा रहे। भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई अभिनेता है, कोई नेता है, कुछ समय तक तो ईश्वर्य दिखता है, फिर जहां हवा का रुख बदला उनका ईश्वर डाउन हो जाता है। तो भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूरे भगवान है, उसका वर्णन किया गया है। और जो लोग भक्ति योग करते हैं केवल वही लोग परम सत्य भगवत साक्षात्कार का दर्शन कर पाते हैं। परम सत्य साक्षात्कार का दर्शन करने से तात्पर्य है कि वो भगवान को अपनी आंखों से साक्षात देख लेते हैं, सब विग्रह उनको साक्षात सामने देखते हैं विग्रह से, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज, अनेक पूरा पांडव हैं, आप सब जानते ही हैं, वृत्रासुर है, अम्बरीश महाराज इत्यादि। फिर 25 से लेकर 27 श्लोकों तक जो तीन योग हैं परम सत्य के, चूंकि तीन परिपेक्ष हैं, तीन साक्षात्कार हैं, तो स्वाभाविक उनकी विधि भी होगी। तो जो तीन विधि हैं, जैसे कि ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करना है तो उसकी विधि क्या है, ज्ञान योग। यदि किसी को परम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना है उसकी विधि क्या है, अष्टांग योग। और किसी को भगवत तत्व का साक्षात्कार करना, सविग्रह भगवान का दर्शन करना, तो उसकी विधि क्या है, भक्ति योग। तो इन तीनों योगों को उन्होंने एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझा दिया है 25 से लेकर 27वें श्लोकों में, ज्यादा हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम 25 पे ही हैं। संक्षिप्त में बताऊंगा किस प्रकार उन्होंने तुलना करी, एक उपमा दी है सूर्य की, कि किस प्रकार जो अष्टांग योग है उसका जो लक्ष्य है वह ब्रह्म की प्राप्ति करना, सॉरी जो ज्ञान योग है, जो ज्ञान योगी है उनका लक्ष्य क्या होता, उनका जो साधन साध्य है वो है ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करना। तो ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य की किरणों से या सूर्य की रश्मि से की गई है। तो मतलब जो ज्ञानी हो गए वो है सूर्य की किरणों के समान, ऐसा समझिए। दूसरा जो है परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना है तो उसकी विधि है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग जो है वो सूर्य का जो गोला है उसके समान है, एक उपमा से उदाहरण से समझाया जा रहा है। और जो भगवान तत्व का साक्षात करना है वो कौन है, साक्षात सूर्यदेव। मतलब भगवत तत्व का जब व्यक्ति दर्शन करेगा तो साक्षात भगवान का दर्शन करेगा। तो जिस प्रकार देवता के लोक के निवासी साक्षात सूर्य ग्रह का, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, वैसे भक्त योगी जो है दर्शन करेगा भगवान का। अब हम जो इस आज के श्लोक में आते हैं, भक्ति योगे भक्त पाए या हर दर्शना सूर्य न सविग्रह देखे देवगणा। अनुवाद है कि भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी देखते हैं। तो देखिए एक बड़ी अद्भुत बात है कि अभी हम मनुष्य लोग हैं, अभी हम यहाँ हॉल में बैठे सूर्य की किरणों को तो देख रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि सूर्योदय हो चुका है, बाहर प्रकाश है, यहां तक कि हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी देख पा रहा है, पूरी प्रकृति को देखा जा रहा है। लेकिन हम लोग यहां से बैठे बैठे साक्षात सूर्य देव को नहीं देख सकते, उनके विग्रह को नहीं देख सकते, उनके रूप को नहीं देख सकते। ऐसा क्यों, जबकि देवतागण जो देवलोक में रहते हैं वो सूर्य देव को साक्षात देखते हैं। जब वो देवलोक में रहते हैं तो सूर्य देव का जो पथ जो भगवान ने उनको निश्चित करके दिया है, परिपथ दिया हुआ है, तो उस पर जब चलते हैं तो साक्षात देखते हैं सूर्य विग्रह को देखते हैं, वो कि कैसे हैं दिखने में, कौन से वस्त्र पहने हैं, क्या सर पे क्या मुकुट है, ना साक्षात दिख रहा है एकदम। अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हम लोग नहीं देख पा रहे लेकिन देवलोक के निवासी सूर्य देव को देख लेते हैं। इसी बात की चर्चा यहां हो रही है, उदाहरण दिया जा रहा है, ये एनोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि एक भक्त भगवान के दर्शन वैसे ही करता, सविग्रह करता है, साक्षात करता है, जिस प्रकार की देवता लोक के निवासी साक्षात सूर्यदेव का दर्शन करते हैं। लेकिन हम मनुष्य, हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, हमें भगवान हम सॉरी सूर्य की हम रोशनी देख सकते हैं, बल्कि सूर्य का गोला देखने में भी कठिनाई होती है, एकदम सामने देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाती हैं, देख नहीं सकते हैं दर्शन सूर्य भगवान के, सूर्य देव के तो दर्शन ही भूल जाइए। लेकिन देवता देवलोक देख लेते हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है, तो हम इसको समझेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूं कि पहले ये वंदन कर दूं, हाँ, ये तीनों पद के बारे में, जैसे ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है। तो ज्ञान योग का जो साधक है वो ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा है, और अष्टांग योग का साधक परमात्मा साक्षात्कार कर रहा है, और भक्ति योग का साधक भगवान का साक्षात्कार कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, हालांकि परम सत्य तो एक ही है, बस तीन अलग अलग परिपेक्ष हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जब ज्ञान योग पर तो ब्रह्म तक ही पहुंच पा रहा है। तो इसका उत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर अपनी टीका, सीसी की टीका है उनकी, जिसे बोलते हैं अनुभाष्य, अपनी टीका में बता रहे हैं उसका कारण कि ये जो हो रहा है उपासना भेद है। उपासना भेद तत्व को वो निरूपित करते हैं वहां पर कि उपासना का भेद आता है। अगर आप ज्ञान योग की उपासना करेंगे तो आपको केवल ब्रह्म तत्व का ही साक्षात्कार होगा, आपको परमात्मा का नहीं हो सकता है, आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। और अगर आप अष्टांग योग को अपनाते हैं, अष्टांग योग को ग्रहण करते हैं, तो फिर आपको जो है परमात्मा साक्षात्कार होगा, जो कि साक्षात्कार है, परम सत्य का ही साक्षात्कार है, लेकिन अपूर्ण साक्षात्कार है, पूर्ण साक्षात्कार नहीं है वो। जब भक्ति योग करेंगे आप, तब आपको पूर्ण साक्षात्कार ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, आप उनका विग्रह को आंख से देख सकता है, भक्ति योगी साक्षात सामने। ये ध्रुव महाराज ने देखा, प्रहलाद महाराज ने देखा, अनेक भगवान के महान भक्त हैं, पांडव तो रोज ही देखते थे उनको तो इस तरह से उनके साक्षात्कार होते हैं वो। तो वो इसलिए है उपासना भेद के कारण। फिर भक्ति विनोद ठाकुर वो अपनी टीका लिखते हैं इसी श्लोक के ऊपर, जिसको बोलते हैं अमृत प्रवाह। तो अमृत प्रवाह में बताते हैं कि देखिए, भगवान के नित्य सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार हमारी जड़ इंद्रियों से नहीं हो सकता। हर कोई सोचे कि हम इंद्रियों से भगवान को साक्षात देख लें, तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो जड़ हैं, और भगवान के जो शरीर ही है पूरा वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह है वो। तो जड़ इंद्रियों से साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का विग्रह ही सच्चिदानंद है, शाश्वत है, चिन्मय है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अधोक्षक मतलब ऐसे भगवान जिनका विग्रह, जिनका हम अपनी जड़ आंखों से, इन जड़ इंद्रियों से साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है, वो बता रहे कि जड़ इंद्रियों से आप चिन्मय देह का साक्षात्कार कैसे करेंगे, ये संभव ही नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर जो है उस ज्ञान मार्गी, अष्टांग मार्गी और भगवान के सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन नहीं कर पाते, इसीलिए ज्ञान योगी भी नहीं कर पाएंगे, अष्टांग योगी भी नहीं कर पाएंगे, बस केवल भक्त योगी जो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो चर्चा हम करने आ रहे, उससे पहले हल्का सा हम इस पर चर्चा कर लें कि आखिर तीनों योग होते क्या है, तीनों का पाथ क्या है। तो देखिए, इसकी शुरुआत एकदम इस तरीके से होती है, इसका चार्ट है जो जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा हुआ है भागवतम की, उसी से मैं लेके बता रहा हूं आपको कि शुरुआत होती है विकर्मी से, विकर्मी होता है, विकर्मी के ऊपर कर्मी होता है, और कर्मी को पड़ता है कर्मार्पणम। विकर्मी किसको कहते हैं, विकर्मी यानी इस जगत के ऐसे लोग जो दिन रात इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, जैसे कि मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं इत्यादि, लेकिन वो जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता है उनको, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय को तुष्ट करना है। अभी देखे बाहर का सारा जगत इंद्रिय तुष्टि में ही लगा हुआ है। अगर प्रभुपाद जी, अगर आपने पढ़ी होगी भगवद्गीता का, भगवद्गीता यथारूप का आमुख, तो उसे प्रभुपाद जी लिखते हैं बात क्लियर आखिरी पैराग्राफ में कि इस संसार के सारे लोग केवल इसीलिए जी रहे हैं, दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करें, और इसीलिए मैंने भगवद्गीता लिखी। आगे लिखते हैं वो, ये भगवद्गीता यथारूप में केवल इसलिए लिख रहा हूं, हालांकि मार्केट में 700 एडिशन है, लेकिन भगवद्गीता में लिख रहा हूं, और यह आंदोलन मैंने इसी बात के लिए स्थापित किया है कि इस गीता का केंद्रीय तत्व लोग ग्रहण कर लें। तो मूल तत्व क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, तो बोलते हैं कि हर जीव का एक कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों मन को संतुष्ट ना करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। यह भगवद्गीता का केंद्रीय बिंदु है, और यदि यह बात समझ ली, एक ने भी समझ लिया, मतलब आचरण में उतार लिया, केवल सूचना नहीं आचरण में उतार लिया, तो मैं समझूंगा कि मेरा कृष्ण भारत आंदोलन सफल हो गया। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं आमुख में। तो वही बात है कि जो विकर्मी होते हैं वो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, लेकिन गलत तरीके से लगे, शास्त्रीय अवज्ञा के विरुद्ध लगे, उनको हम बोलते हैं विकर्मी।
उससे ऊपर की श्रेणी आती है उसको बोलते हैं कर्मी। कर्मी कौन होता है? अभी सादा समझावट ये मान्य थी कर्मी वो लोग हैं जो कि इंद्रित गलत तरीके से लगे, तो ऐसा नहीं है। देखा जाए तो कर्मी विकर्मी से अच्छा स्तर है। विस्तर क्या है कि जो कर्मी जो होते हैं हालांकि वो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, संदेह नहीं है इस बात में, लेकिन वो जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? शास्त्र की अनुमति से कर रहे हैं, शास्त्र के दिए गए पथ पे कर रहे हैं। वो तो इंद्रिय भोग करते हैं, शास्त्र के अनुसार करते हैं। संभालो किसी को पुत्र प्राप्ति, पुत्रत्व की प्राप्ति करनी है, मतलब यहाँ पे यहां से वो आगे की स्थिति से वर्णन सिस्टम में आएगा। वो तो वो इंद्रिय भोग करता है लेकिन शास्त्र द्वारा अनुबोधित होते हैं, वंग्रह वैसा करता है। तो अपना कर्म करेगा, उसकी फिलॉसफी क्या है? मुझे पूरा फल चाहिए। भाई शास्त्र बोलते हैं अगर ये कर्म करोगे तो ये चीज मिलनी चाहिए, मैंने ये कर्म किया मुझे इसका फल दीजिए, ये उसकी मानसिकता होती है। फिर करते 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 लोगों के संपर्क में आता, फिर उसको एक ज्ञान होता है कि अरे बहुत कर लिया मैंने अपना इंद्रिय भोग, लेकिन देखा जाए तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ मैं। तो फिर उसके मन में बात आती है कि मुझे क्या करना चाहिए? कर्मार्पणम करना चाहिए। विकर्मी, विकर्मी के ऊपर कर्मी, और कर्मी के ऊपर कर्मार्पणम, मतलब मैं कर्म करूंगा और फल जो है अर्पण करूंगा। अभी यहां से खेल चालू होगा। कर्म अर्पणम से ये पात ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्तियों का पात यहां से चालू हो रहा है, क्योंकि अब उसके दिमाग में आ गया है कि मेरे को अब कर्म का फल नहीं भोगना है, मेरे को सारे कर्मों के फल अर्पित करना है। जब यहां तक वो आ जाता है, अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पाथ चुनता है, वो किस गुरु के पास जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां से अगर वो ज्ञान गुरु के संपर्क में आ गया, ऐसे गुरु जो ज्ञान के पाथ पे चल रहे हैं, यदि वो उनके संपर्क में आ जाता है तो फिर वो कौन सा पथ फॉलो करता है? ज्ञान योगी का पथ। अच्छा एक बात और बता दूं कि ज्ञान योग का जब पथ फॉलो करना होता है तो उसमें किसी भी मार्ग में, चाहे ज्ञान हो या अष्टांग हो या भक्ति योग हो, किसी भी पाथ में अगर आपको प्रवेश करना है तो उससे एक योग्यता होती है। बिना योग्यता के आप ज्ञान योग में प्रवेश नहीं कर सकते हो, और बहुत ज्ञान योग की जो योग्यता है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो महान, उनको बड़ा प्रणाम करना चाहिए जो वो इसी योग्यता ले आते हैं। तो ज्ञान योग के पाथ में क्या योग्यता चाहिए प्रवेश करने के लिए? विरक्ति, डिटैचमेंट, और वो भी कितना? 100%, 100% उसको संसार से विरक्त होना चाहिए पूरी तरीके से, तब वो ज्ञान गुरु उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। नहीं तो उससे पहले अभ्यास कराएगा, आप अभ्यास करो भी रेडी नहीं हो। जब अभ्यास करेगा, परिपक्व हो जाएगा, तब ज्ञान गुरु उसको जो है एक्सेप्ट करेगा, और वहां से वो जो है कर्मफल अपने भगवान को अर्पण करना चालू करेगा। तो उसका पाथ क्या है? इसको शुरू में बोलते हैं योगा रुरुक्षु, और आपने भगवद गीता पढ़ी होगी तो पांचवें अध्याय में है अष्टांग योग जो है वहां पे बताया गया, योग रुरुक्षु और योग आरूढ़ा, इनमें क्या अंतर है। तो यहां से बनता है योग रुरुक्षु, है ना, नया है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो अभ्यास करेगा, अभ्यास कैसे करेगा? तो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करेगा, बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करना है, एक शब्द की संस्कृत व्याख्या निकालना, और उसमें अधिकतर वो मानसिक कल्पना में खो जाते हैं। तो जैसे वेदांत दर्शन पढ़ेगा, वो स्मृति पढ़ेगा, या श्रुति ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करेगा, उपनिषद का अध्ययन करते हैं वो लोग, घंटों करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना उनके लिए मामूली बात होती है। हम तो एक घंटे में हो जाता है हमारा भगवदगीता में, वो लोग 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, उनको इतना आकर्षण होता है, एकदम अद्भुत उनका एक जुनून होता है कि मेरे को तो इस बारे साक्षात्कार करना ही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो दृढ़ होते एकदम वो। तो इस तरीके से जब वो करता है, तो करने के बाद जब वो होता, तो फिर जब वो भक्ति के निकट पहुंचता, अपने लक्ष्य के निकट, तो वहां उसको भक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे अष्टांग योगी हो, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने साधन को प्राप्त करने के लिए, साध्य को प्राप्त करने के लिए अंत में थोड़ी सी भक्ति करनी ही पड़ती है। अगर ज्ञान योगी भक्ति नहीं करेगा उसकी सारी मेहनत बेकार है, जीव गोस्वामी क्लियर लिखते हैं, बिल्कुल व्यर्थ है, उसमें समय भी केवलम। तो थोड़ी भक्ति उसको कर, और उनको पता रहता है, गुरु बताता है थोड़ी सी भक्ति कर लो, नाम श्रवण कर लिया, जप अप कर लिया, लेकिन चेतना क्या है? ब्रह्म ज्योति में जाना है मेरे, वहां मिलना है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्राप्त होती है, ज्ञान का पथ है, जो संक्षिप्त में मैंने बताया आपको। इसके बाद दूसरा व्यक्ति है, वो आता है कर्म अर्पणम पर, और उसको अष्टांग योगी गुरु मिलकर संपर्क में आ गया, वो तो अष्टांग योग का पथ फॉलो करेगा। अष्टांग योग का पथ क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब स्टेज बाय स्टेज करते 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 वो कहां पर आता है, जीवन मुक्त स्टेज पर जाता है। जीवन मुक्त स्टेज को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो शरीर में तो है लेकिन उसमें शारीरिक चेतना नहीं है, वो शारीरिक चेतना से पर, हालांकि वो शरीर में है लेकिन शारीरिक चेतना में बिल्कुल तरह से नहीं है, तो जीवन मुक्त स्टेज हो गई। वहां से फिर अब योग के वो काफी नजदीक पहुंच गया है, अभी उसको थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं योग मिश्र भक्ति। और योग मिश्र भक्ति करने के बाद वो साक्षात्कार करता है किसका, परमात्मा का। अभी देखिए इसमें एक चीज और बताया तो फिर आगे भक्ति योग में चलेंगे, समय भी कम बचा है। ये दोनों योग जो दोनों व्यक्ति फॉलो करते हैं तो हालांकि ये अपनी आध्यात्मिक सिद्धि तो हासिल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल समाधि तक पहुंच गए, लेकिन वो एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। जब ये इनको देह छोड़ने की बात आती है तब फिर इनको अष्ट चक्र जो होते हैं, षट चक्र कुंडलिनी योग, वो करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को पता होगा आत्मा जो होती है वो लोग क्या करते हैं, मूलाधार से यहां से उठाते हैं आत्मा को, यहां से लाएंगे, उठा के लाके पूरा लाकर यहां से निकालते हैं ब्रह्मरंध्र से, तो उसको बोलते हैं षट चक्र विद्या या कुंडलिनी योग। वो भी वो लोग करते हैं क्योंकि अपने शरीर सिद्धि तो मिल गई है लेकिन शरीर छोड़ के पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो कुंडलिनी योग करते हैं। फिर हम आते हैं भक्ति के पथ पर कि वो व्यक्ति अगर भक्ति के पथ में आ गया, भक्त से मिल लिया, तो सबसे पहले क्या होगा, गुरु पदाश्रय, वहां गुरु के पास जाएगा, वहां से फिर संग करेगा और वो साधना भक्ति का प्रारंभ कर देगा। साधना भक्ति करता रहेगा, करने पर उसको आएगी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के बाद आएगा साधु संग, ये आपको पता ही है, साधु संग के बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर आएगा निष्ठा, निष्ठा मतलब दृढ़ निष्ठा ऐसा बोलते हैं जीव गोस्वामी, फिर रुचि आसक्ति भाव, और प्रेम में जब आ गए तो क्या करेगा, साक्षात दर्शन करेगा भगवान के, आंखों के साथ दर्शन करेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों पाद की जो है विधि होती है। और इसमें एक चीज ये भी रहती है कि ज्ञानी योग जो है वो अगर उसे आवश्यकता लगती तो अष्टांग योग का पथ भी ले लेता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका फोकस ज्ञान योग ही रहता है, लेकिन कभी अष्टांग योग भी पथ कुछ स्टेप ले लेता है। इसी प्रकार अष्टांग योगी भी अष्टांग योग तो करता है लेकिन कुछ चीजें वो ज्ञान योग से भी ले सकता है, लेकिन उसका फोकस परमात्मा अष्टांग योग की प्राप्ति है। तो इस तरीके से सारी बातें यहां चलती हैं। अब हम आते हैं अपने श्लोक पर कि क्या कारण है कि हम लोग सूर्य देव का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं जबकि देवता लोग सूर्य के साक्षात विग्रह का दर्शन करते हैं, क्यों है ऐसा? तो इसका कारण बताते हैं, इसका कारण है कर्मा, पुण्य कर्मा। जो देव लोग मतलब दिव्य का मतलब है कि उनके पास देवताओं की ज्योति होती है, देवलोक की ज्योति होती है, जहां देवता होते हैं उनके पास यदि ज्योति होती है उनके पुण्य कर्मों के कारण कि वो साक्षात जब सूर्य देव निकलते हैं साक्षात देखते हैं, उनको दिख रहा है कि सूर्य देव जा रहे हैं, कारण उनके से पुण्य कर्म है। लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारा कर्म वैसा नहीं है कि हमको वो अनुमति नहीं मिल पा रही है अभी कि हम जो है सूर्यदेव को देख सके, ऐसा बताते हैं। तो अभी देखा जाए तो देवता लोग जो है चलो ठीक है सूर्यदेव के दर्शन तो कर लेते हैं वो, लेकिन फिर वो भगवान के दर्शन तो नहीं कर पा रहे, ऐसा कैसा? फिर हाँ प्रश्न ये उठता है, आप सूर्यदेव के दर्शन कर रहे हो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा क्यों भाई? आप दिव्य शब्द यूज किया, आप दिव्य दृष्टि है, गीता में भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को जब विराट रूप दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, ददामि दिव्य चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु का अंतर वो भी बड़ा अच्छा बताया बलदेव विद्याभूषण ने, अभी चर्चा करेंगे उसमें संक्षिप्त में एकदम। तो वो नहीं देख पाते देवता लोग, हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी सब देवता को लेके जाते हैं क्षीरोदक्षा विष्णु के पास तो देवता थोड़ी देख पाते हैं, बस ब्रह्मा जी देखते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनका कर्मा उनको वो अलाउ नहीं करता कि उनको देख सके भगवान को, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है, उसके लिए तो भक्ति ही चाहिए। तो कर्म ना होने के कारण, पुण्य कर्म नहीं होने के कारण वो देख नहीं पाते, लेकिन ब्रह्मा जी देख सकते हैं। गीता में भगवान देते हैं मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाता हूं तो दिव्य चक्षु दे रहे हैं। तो अभी दिव्य चक्षु देखने का वहां पे क्या अर्थ है? दिव्य चक्षु का कभी कभी हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन के दृष्टिकोण को उन्नतशील किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं अरे 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 यहां तो अर्जुन का जो उसकी जो ज्योति है उसको डिग्रेड किया गया, मैंने अपयश डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन यानी उत्कर्ष और डिग्रेडेशन है अपकर्ष, तो अपकर्ष किया जा रहा है अर्जुन को, तो ऊंची अवस्था नहीं बल्कि उसके विजन को नीचे किया जा रहा है, दृष्टिकोण को निम्न स्तर का दृष्टिकोण दिया जा रहा है। क्योंकि विराट रूप क्या है? विराट रूप तो आध्यात्मिक नहीं है, अब इससे पहले अर्जुन साक्षात कृष्ण वासुदेव कृष्ण को देख रहे थे, सच्चिदानंद विग्रह को देख रहे थे, तो उनका दृष्टिकोण उस समय प्रेम आध्यात्मिक चक्षु थे, प्रेम अर्जुन के पास, अर्जुन भगवान के प्रेमी भक्त हैं, तो प्रेमी भक्त को अगर विराट रूप दिखाना है तो उसे नीचे के ग्रेड में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता है। तो ऐसा बल्लभ विद्याभूषण बताते हैं कि उसको ये वाले चक्षु दिए, देवताओं वाले चक्षु दिए गए जिससे वो विराट रूप को देख सके। और जब विराट रूप देखा गया तो ऐसा नहीं केवल अर्जुन ने देखा, बल्लभ विद्याभूषण टीका में बोलते हैं देवताओं ने भी देखा था। तो भगवान का रूप, हाँ, लेकिन फिर प्रश्न उठता कि यहाँ पे तो लोग जो है भगवान जब धराधाम में आते हैं तो सब लोग उनका रूप देखते हैं, हाँ देखते हैं भगवान की इच्छा से, देवता भगवान का रूप देखते हैं, दसवें स्कंद में लीलाएं देखते हैं, तो देवताओं ने जितनी बार भी जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कालिया पे मर्दन किया तो देवता देखते हैं मर्दन कर रहे हैं, प्रसन्न होते हैं, फूलमाला डालते हैं, देखते हैं वो, क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो भगवान अपनी इच्छा से उनको दिखा रहे हैं, वरना वैसे देवता भी नहीं देख सकते हैं। या मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य लोग में देवता जब आते हैं तो देवता को हम लोग नहीं देख सकते, हाँ देवता अगर चाहे अपनी इच्छा से तो हमें अपना रूप प्रकट करा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार चूंकि देवलोक का शरीर ऐसा है, उनको ऐसी चक्षु दिए मिलते हैं कि वहां पर जो है वो सूर्यदेव का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता है। और इसी बात को स्थापित करने के लिए यहां पर जो है भक्ति योग किया है, स्थापना की जा रही है। और एक बात और भी आती है, जो ऊपर के लोग होते हैं वो अब जैसे देवता दूसरे देवता को देख लेते हैं और ऊपर वाला नीचे को भी देख लेगा, नीचे के लोगों को, लेकिन नीचे वाला ऊपर के लोगों को नहीं देख सकता क्योंकि पुण्यकर्मा नहीं है। तो खेल इसमें जो पूछे मूल जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह का अपना वायुमंडल होता है, प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता, वो व्यवस्था जो है एक्चुअली जीव का अपना कर्मा है, पुण्यकर्मा। पुण्य कर्मा के हिसाब से अगर ऐसा पुण्य किया है उसने कि देव लोग जाए वो तो बराबर दर्शन करेगा, क्यों नहीं करेगा। सूर्यदेव का दर्शन करना तो पुण्य लोग जाना, देवताओं के लोग जाना का पड़ेगा। ऐसा है। और मृत्यु लोक के निवासों का जो कर्मा होता है वो साधारण कर्मा होता है। अभी देखिए इसमें भी दो तीन चीजें हैं और गहराई में अगर जाएंगे, अभी देखिए असुर लोग हैं और मनुष्य हैं, तो असुर और मनुष्य की तुलना की जाए तो कौन सी योनि निम्न योनि है? असुरों की होनी निम्न होनी अगर देखा जाए तो, लेकिन असुर लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, हमको तो उठाकर जरा में ही, अभी ऐसा कैसा है। तो वो उसमें भी है कि एक्चुअली वो पुण्य भी दो तीन तरह के होते हैं, सात्विक पूर्ण, राजसिक पूर्ण। तो राजसिक पूर्ण वाले जो होते हैं उनको असुर योनि मिलती है, इस तरह से पूरा वर्णन है उसमें। लेकिन देवता जो है वो केवल सूर्य नारायण को देख सकते हैं, और भगवान अगर दिखाना चाहे तो भगवान को देख सकते। कुंती महारानी साक्षात देख रही थी। तो सारी बात ले देखिए यह आ रही कि यहां पर जो इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि जिस प्रकार देवता गण सूर्य लोक में सूर्य देव को देख सकते हैं, उसी प्रकार कोई व्यक्ति भक्ति योग का लक्ष्य साधन कर भक्ति योग को देख सकता है। तो यहां पर जो तीन पात पहले चर्चा हुए, ज्ञान योग, आष्टांग और भक्ति योग, तो यहां पर भक्ति योग की सुपेरियरिटी, भक्ति योग की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा रहा है श्लोक के माध्यम से, कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि तीन परम सत्य के तीन दृष्टिकोण होते हैं, वो मैंने आपको बताया, उनके तीन पाथ होते हैं, उन तीनों पाथ को भी बताया कैसे उनका साध्य है, क्या साधन है, उसकी भी चर्चा संक्षिप्त में हमने करी। लेकिन अगर आपको भगवत तत्व विग्रह का दर्शन करना है तो आपको भक्ति योग ही करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भक्ति योग की जो है श्रेष्ठता को स्थापित किया गया है। और अगर आप देखेंगे चौथा स्कंद का नवा अध्याय दसवां श्लोक, वहाँ पर ध्रुव महाराज भी इसी बात को स्थापित कर रहे हैं कि हे प्रभु, परम सत्य के तीन साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान। लेकिन जो भगवान जो तत्व है, जो भगवान का साक्षात्कार है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है। और क्यों है बड़ा अच्छा उत्तर से बता रहे, पूरा समझ में आ जाएगा एकदम। तो वो श्लोक इस तरीके से, याने प्रतिष्ठान व्रताम तव पाद पद्य धारेन ध्वज्य कथा श्रवणेन वास्यात् स ब्रह्मराणी स्वामिन मन्यपि नाथम भूता किम तस्कसलु ललुता तत्पतां विमानात्। वो बोलते हैं, ध्रुव महाराज बोलते हैं, हे भगवान, आपके चरण कमल के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद अवस्था से बढ़कर है। ध्रुव महाराज ने जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं वही डिक्लेयर कर दिया कि प्रभु आपका जो भगवत साक्षात्कार है ब्रह्म साक्षात्कार से कई गुना अधिक श्रेयस्कर है और बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तादारकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंद मेहता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वह नीचे ही गिर जाता है। तो ध्रुव महाराज ये बोल रहे कि हे प्रभु, भक्ति की सुपेरियरिटी, भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं और वो ये बोलते हैं कि भगवान आपका जो भगवत साक्षात्कार है वो जो है ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार से बहुत गुना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तब पाद्य पद्य, क्योंकि जब आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं और जब आपकी भवज्जना कथा श्रवण है ना, जब आपके भक्तों से आपकी हरि कथा का श्रवण किया जाता है, नाम जप किया जाता है, उससे जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है उसके सामने ब्रह्मानंद का आनंद, दिव्य आनंद ब्रह्मानंद से अधिक श्रेयस्कर है। तो देखिए इस बात को भी समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा कोई सोच सकता है कि ब्रह्मानंद बहुत निम्न स्तर का साक्षात्कार है, ऐसा नहीं है। इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, ब्रह्मानंद बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली में, ये छोटा मोटा आनंद नहीं है। जिस व्यक्ति ने साक्षात्कार कर लिया कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं केवल आत्मा हूं, वो कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि। वो नरक में जा रहा था, नरक में जाना था उसको, और उसने मृत्यु लोक में आकर साक्षात्कार कर लिया कि मैं शरीर हो ही नहीं, मैं आत्मा हूं, उसको रियलाइजेशन आ गया, पूर्ण रियलाइजेशन है। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये भी, लेकिन उसकी इच्छा है कि ब्रह्म ज्योति में रहना है, रहो भाई। ब्रह्मानंद साक्षात, ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार कई तरीके से किया जा सकता है, अष्टांग योग से कर सकते हैं, ज्ञान योग से कर सकते हैं, निष्काम कर्म से, निष्काम कर्म योग से कर सकते हैं, और भक्ति से भी कर सकते हैं। यस, भक्ति करके भी भक्त भगवान से कभी कभी मांग लेता है कि प्रभु मुझे तो ब्रह्म ज्योति में जाना, हालांकि उसे पता है कि इनका भगवान का जो भगवत साक्षात्कार भी है, उसकी इच्छा है। उसका एक नाम है भक्ति का, मैं नाम भूल रहा हूं, भक्ति एक है वो। तो इस तरह चार तरीके से कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी जो आपका भगवत तत्व है, जो भगवान साक्षात्कार प्रभु, वो बहुत श्रेयस्कर, क्योंकि इसमें आपके चरणों के दर्शन, आपके चरणों का ध्यान करने का आनंद है, आपकी कथाओं को सुनने का आनंद है, आपके नाम जप के सुख का आनंद है। तो वो जो आनंद आ रहा उसके सामने ब्रह्मानंद तुच्छ है। उन दोनों की तुलना अगर करें तो तुच्छ है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि ध्यान लगाने की सुविधा ब्रह्म ज्योति में किस पे ध्यान लगा हुआ है। तो इसीलिए जो है इसी बात को यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार देवता लोग सूर्य देव का दर्शन कर लेते हैं, उसी प्रकार वो साधक, यहाँ पे साधक की उच्च अवस्था की बात की जा रही है कि जो भक्ति योग करता है और भक्ति योग में जब वो प्रेम तक प्राप्ति कर लेता है तो भगवान वो आपको आंखों से दिखता, जैसे हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं वैसे भगवान का विग्रह का साक्षात्कार करता है, सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार करता है। तो कुल मिलाकर श्लोक में भगवत भक्ति को, तत्व को निरूपित किया गया है। आप सबका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।